नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के उद्घाटन सत्र में नए मानव विजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 25 नई अटल कैंटीन्स की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब आपूर्ति मामले में एक अंतर्राज्य आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया है। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई की वजह से राजधानी के कई इलाकों में कल और शनिवार को जलापूर्ति रहेगी प्रभावित। और दिल्ली ओपन टेनिस में दिविज शरण और करण सिंह की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लोकतंत्रीकरण पर बल देते हुए कहा है कि इसे विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बनना चाहिए। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा, और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में।
श्री मोदी ने एआई के लिए मानव विजन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका अर्थ है नैतिक और सैद्धांतिक प्रणाली, जवाबदेह शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता, सुलभ और समावेशी, वैध और न्याय संगत।
मैं मानव विजन प्रस्तुत करता हूं, एम मॉरल सिस्टम्स, एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो, ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड नेशनल सॉवरेनिटी, जिसका डेटा उसका अधिकार, ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, एआई मोनोपोली नहीं मल्टीप्लायर बने, बी वैलिड एआई लॉफुल हो।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार एआई स्टैक के सभी 5 स्तरों पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने एक कॉमन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म बनाया है, जो स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों को किफायती दर पर 38,000 GPU उपलब्ध कराता है। बाद में श्री वैष्णव ने समिट में नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इंपैक्ट कमिटमेंट्स की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के अवसर पर कई द्विपक्षीय बैठकें की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी के शहजादे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शॉफ के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के रूप में एआई के उपयोग पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन से भी मुलाकात की। उन्होंने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के उद्घाटन समारोह में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी उपस्थित भी उपस्थित रहे। डाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने अपने संबोधन में एआई को अगली मूलभूत अवसंरचना कहा। उन्होंने देश की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना संबंधी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दारियो अमोदेई ने कहा कि एआई लगभग एक दशक से तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने एआई को जीवन काल का सबसे बड़ा परिवर्तन बताया।
ये तरक्की दिखाती है कि जब इंसान बड़े सपने देखता है तो क्या संभव है, और एआई से बड़ा सपना किसी टेक्नोलॉजी ने नहीं देखा है। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बदलाव है। हम बहुत ज्यादा तरक्की और नई खोजों के मुहाने पर हैं, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को पुरानी कमियों को दूर करने में सहायता कर सकती है।
लेगेसी गैप्स।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हमारे भविष्य के महासागरों के लिए एआई, डेटा मॉडल और शासन विषय पर एक उच्च स्तरीय चर्चा का आयोजन किया। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि एआई भारत के महासागरीय सुशासन, आपदा प्रबंधन, समुद्री आजीविका और नीली अर्थव्यवस्था के विकास को मजबूत करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आम लोगों से पौधारोपण करने का आग्रह किया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में की। ये कार्यक्रम उनके पौधारोपण संकल्प के 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। श्री चौहान ने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे शक्तिशाली साधन है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ने और इसे जन आंदोलन में बदलने के लिए एक समर्पित मंच बनाया जाना चाहिए।
पर्यावरण बचाने के लिए व्यापक मंच तैयार किया जाए, जिसमें समाज के सभी भाई बहनों को जोड़कर एक अपील मैं सदैव करता हूं कि रोज सबके लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं। मैरिज एनिवर्सरी मनाने के इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर पेड़ लगाएं, तो बच्चों के जन्मदिन पर लगाएं या माता पिता की पुण्य स्मृति में भी पेड़ लगाएं, तो सहज ही पेड़ लगातार लगते चले जाएंगे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में 25 नई अटल कैंटीन्स की शुरुआत की। कृष्णानगर की नर्सरी बस्ती से डिजिटल माध्यम से इन कैंटीनों का उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही दिल्ली में अटल कैंटीनों की कुल संख्या बढ़कर 71 हो गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, प्रवासी मजदूरों, बाहर से पढ़ने आए छात्रों, रिक्शा चालकों, सफाई कर्मचारियों, घरेलू सहायकों और मजदूरों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार हर थाली पर जरूरतमंद लोगों को 25 रूपए की सब्सिडी देकर 5 रूपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल कैंटीन उन लोगों के लिए है जो प्रतिदिन कठिन परिश्रम करते। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जरूरतमंदों को सस्ती कीमत पर सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन मिले।
जहां 70,000 लोग भोजन कर पाएंगे, दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है, अंत्योदय का जो सपना अटल जी ने देखा था, उन सब पे काम करते हुए दिल्ली सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है। और ऐसे में हमारी दिल्ली में 70 अटल कैंटीन शुरू होना हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैंटीनों में दाल, चावल, रोटी और सब्जी जैसे संतुलित भोजन परोसे जा रहे हैं। साथ ही व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू रखने के लिए डिजिटल टोकन सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार का लक्ष्य 100 अटल कैंटीन शुरू करने का है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए अटल कैंटीन का पूंजी कोष बनाने का सुझाव भी दिया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज मॉडल टाउन के लालबाग और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने करावल नगर के चौहान पट्टी बस टर्मिनल पर अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। सहकारिता विभाग मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत शौचालयों के नवीनीकरण, सीसी रोड कार्य, नालियों के निर्माण और अन्य जन सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इस दौरान सहकारिता विभाग मंत्री ने एक अटल कैंटीन का भी शुभारंभ किया है। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवैध शराब आपूर्ति के मामले में एक अंतर्राज्य आपूर्तिकर्ता को द्वारका से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 2000 से ज्यादा अवैध शराब की बोतलें और तिपहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पैसा कमाने के लिए अवैध शराब की तस्करी में शामिल था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने मिशन रिकनेक्ट 3.0 के अंतर्गत लगभग 580 चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करके उनके आधिकारिक मालिकों को सौंपे हैं। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई राजधानी में चल रहे इस सप्ताह के 79वें दिल्ली पुलिस सप्ताह 2026 के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय कोयला और पेट्रोलियम मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण खनिजों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा, लिथियम और तांबा आधारित प्रौद्योगिकियों का आधार महत्वपूर्ण खनिज ही हैं। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय महत्वपूर्ण खनिज परिदृश्य सतत भविष्य की नींव के दूसरे संस्करण में ये बात कही। संवाददाताओं से बातचीत में श्री रेड्डी ने बताया कि स्थायी चुंबकों के निर्माण की तकनीक विकसित कर ली गई है और निजी क्षेत्र को इसके हस्तांतरण के साथ ही उत्पादन का काम भी शुरू हो गया है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनिंग मिनिस्ट्री के NFTDC के बहुत सालों से रिसर्च करके आज परमानेंट मैग्नेट का एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है। उसके अभी प्राइवेट सेक्टर के साथ वो टेक्नोलॉजी देकर प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है। इक्विपमेंट्स भी ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश किया है। इस साल एंडिंग तक प्रोडक्शन करना चाहिए, काम आगे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत का होगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने आज बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के चलते राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कल और शनिवार को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार कल सेक्टर D2, वसंत कुंज, छतरपुर, मध्य मार्ग, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, देशबंधु अपार्टमेंट, नेहरू प्लेस और हरकेश नगर क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। वहीं शनिवार को किशनगढ़ गांव, जोनापुर, अमृतपुरी गढ़ी, संजय कॉलोनी और ओखला फेज 2 के आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक पहले से पानी जमा कर लें। पानी के टैंकर टेलीफोन नंबर 1916 पर उपलब्ध रहेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समाज में संतुलन और सेवा की भावना पर आधारित उनका जीवन आज भी देशवासियों को जिम्मेदारी के साथ देश और समाज के लिए निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने संवैधानिक मर्यादाओं और शुचितापूर्ण राजनीति के साथ निरंतर वैचारिक संघर्ष किया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्षा श्रीमती सत्या शर्मा ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि उत्कृष्ट प्रशासक और जननायक भी थे। ये बात श्रीमती शर्मा ने आज दिल्ली नगर निगम द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित शिवाजी पार्क में एक समारोह के दौरान कही। श्रीमती शर्मा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुशासन, साहस और राष्ट्र सम्मान की जो मिसाल स्थापित की वो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा और इस सत्र के आरंभ में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। ये सत्र 18 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे। दिल्ली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में दिविज शरण और करण सिंह की भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज हुए मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने दिमितार कुज़मानोव और डेनिस येवसेयेव को 7-6, 6-4 से हराया। राजधानी में आज दिनभर धूप खिली रहने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान रहा 11.4 डिग्री सेल्सियस। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के उद्घाटन सत्र में नए मानव विजन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 25 नई अटल कैंटीन्स की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब आपूर्ति मामले में एक अंतर्राज्य आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली ओपन टेनिस में दिविज शरण और करण सिंह की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में। और इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।